الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العقل أصل ديني أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ دو جمعوں میں ہم عقل کے بارے میں پڑھتے رہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل میرے دین کی جڑ ہے، بیس ہے، دین کا، ریلیجن کا بیس ہے۔ اس کو آج تھوڑی سی اور تفصیل سے سمجھیں۔ دنیا میں دو طرح کے نظام ہیں، یعنی دو قسم کے سسٹم ہیں۔ ایک کو تکوینی نظام کہتے ہیں اور دوسرے کو تشریعی نظام کہتے ہیں۔ تکوینی نظام جس کا تعلق مادے سے ہے، میٹر سے ہے، انسان اور انسان کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں جو کچھ بھی پوری کائنات کے اندر دنیا میں نظر آ رہا ہے، اس سارے کا تعلق میٹر سے ہے، مادے سے ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو سسٹم ورک کر رہا ہے اس نظام کو تکوینی نظام کہتے ہیں۔ ایک اور نظام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے انبیاء لے کر آئے، جیسے قرآن مجید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچے، جس میں زندگی گزارنے کا کامل طریقہ، مکمل وے آف لائف سمجھا دی گئی۔ اس نظام کو تشریعی نظام کہتے ہیں۔ دونوں نظام، دونوں سسٹم، ان کا تعلق علم سے بھی ہے، اور علم کے لیے عقل چاہیے۔ اب اگر ان دونوں کا تعلق علم سے جوڑیں گے تو ایک کا تعلق علم الابدان کہلائے گا، یعنی ابدان کہتے ہیں جسم کو، اجسام کو، یعنی جس چیز کو اللہ رب العزت نے شیپ دی ہے، مادہ جسے میٹر بھی کہتے ہیں، جس کا وزن ہوتا ہے اور جو شیپ میں ہوتا ہے، اس ساری چیز کی انڈرسٹینڈنگ کو علم الابدان کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آج جسے ہم سائنس کی دنیا پڑھتی ہے، سمجھتی ہے، ایکسپلور کرتی ہے، اس سے متعلق ریسرچ کرتی ہے، تو وہ سارا تعلق علم الابدان سے ہوتا ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے، اس کے بارے میں پتہ کریں گے تو میڈیکل نالج آئے گا۔ اگر کوئی بندہ چاند ستاروں کے علم کو حاصل کرے گا، کوئی زمین کے علم کو حاصل کرے گا، کوئی کسی اور چیز کے علم کو حاصل کرے گا. یہ سب کا سب تکوینی نظام علم الابدان کا نالج ہے، میٹر کا نالج ہے، اور یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اس کے مقابلے میں جو تشریح نظام تھا اس کا تعلق علم الادھیان سے ہے. ادھیان دین کی جمع ہے، پلورل ہے دین کا، اور اس کا نالج قرآن کے ذریعے سے ملا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سے ملا. اور اس کا علم دین کا علم کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا تکوینی نظام، اس کے اندر کچھ پرنسپل، کچھ لاز جو ہیں ان کو رکھ دیا، اصول اس میں بنائے، کلیات بنائیں. مثال کے طور پر زمین کی جو گریویٹی ہے، کش ثقل جسے کہتے ہیں، 32.2 ہے. تو آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی چلے جائیں گے وہاں گریویٹی فورس یہی ملے گی. اس وجہ سے جو ہے ایک پرنسپل سمجھ میں آ گیا کہ گریویٹی فورس جو ہے 32.2 ہوگی تو جسموں کا وزن اتنا ہوگا. اگر ہم چاند پہ چلے جائیں گے گریویٹی فورس بدل جائے گی، اسی چیز کا وزن بھی بدل جائے گا. خلا میں چلے جائیں گے اسپیس میں تو وہاں یہی فورس جو ہے زیرو ہو جائے گی اور اس کا وزن ختم ہو جائے گا. اسی طرح باقی چیزیں، مثلا لوہے ہے، آئرن، آئرن کی جو ہارڈنس ہے وہ پلاسٹک کی طرح نہیں ہو سکتی. ہر جگہ جہاں کہیں بھی آئرن ہوگا وہ ہارڈ ہوگا اور پلاسٹک اس کے مقابلے میں سافٹ ہوگا. وڈ کا جو چیز وڈ ہے اس کا اپنا ایک سٹرکچر ہوگا. اسی طرح آپ جس چیز کو بھی دیکھیں گے، علم الابدان پر غور کرتے جائیں گے، آپ کو جو ہے قوانین خود فطرت کو جو ہے آپ ڈھونڈتے چلے جائیں گے. را میٹیریل میں چیزیں ملیں گی اور وہاں سے ڈھونڈتے 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 آپ اس کے لا کو سمجھیں گے. اور جب لا کو سمجھ لیا تو اب آپ اس کو اپلائی کریں گے اور بہت سارے فائدے اس سے حاصل کر لیں گے. بس یہی سائنسدانوں کا کام ہے. اسکالرز کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے جزیات سے کلی تک پہنچتے ہیں، یعنی برانچز سے ہوتے ہوئے سٹیم تک پہنچتے ہیں، اور اس سے جو ہے جب ان کو وہ لا پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس چیز کو اس طرح سے بنایا ہے، تو بس وہ پھر فارمولا سمجھ میں آ گیا، اب وہ اس کو کسی چیز پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. مثلا سائنسدان جو ریسرچرز ہیں، انہوں نے غور کیا کہ زمین کے اندر جب پودے کو لگایا جاتا ہے تو اس کو اسپیسیفک فوڈ چاہیے ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک ہیٹ انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اور ایک اسپیشل جو ہے پرسنٹیج آف واٹر چاہیے ہوتا ہے. بس اتنی سی بات جب ان کو سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے اس پرنسپل کو اپلائی کیا اور انہوں نے سار ڈسٹ جو ہوتی ہے جسے ہم برادہ کہتے ہیں لکڑی کا، اس کے اندر انہوں نے پلانٹ لگایا، اس کے اندر وہی فوڈ ڈال دیا اور اس میں اتنے جو ہے واٹر ڈالا، اور وہ انہوں نے دیکھا کہ پلانٹ جو ہے وہ سار ڈسٹ کے اندر بھی گرو کر سکتا ہے. پھر انہوں نے سوچا کہ چلو ایسے کرتے ہیں کہ اس کو پانی میں لگا کے دیکھتے ہیں. اب پودے کو پانی میں ڈال دیا اور اس کو مٹی نہیں دی، بلکہ پانی کے اندر انہوں نے وہ سالٹ ڈال دیے اور واٹر کو انہوں نے ایک اسپیسیفک ہیٹ جو ہے جو زمین کے اندر ہوتی ہے اس سے میچ کر دیا. اب روٹس پا पानी के अंदर है और प्लांट उसमें ग्रो कर रहा है। फिर इन्होंने सोचा जब ये पानी में भी हो सकता है और सार डस्ट में भी हो सकता है, तो चलो अब हम चेक करते हैं क्या यही प्लांट हवा में भी ग्रो कर सकता है। लिहाजा उन्होंने एक पाइप बनाया और उस पाइप के अंदर उस प्लांट को उन्होंने हवा के अंदर रख दिया और एक तरफ से उन्होंने एयर को ब्लो किया, उस एयर के अंदर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और हीट को क्रिएट किया और उसमें उन्होंने जो उसका फूड था उसको साथ साथ उन्होंने उस स्पेसिफिक परसेंटेज के ऊपर साथ साथ थ्रो किया और उन्होंने फील किया कि प्लांट जो है ग्रो कर रहा है, उस पर फल और फूल लग रहे हैं। चुनाचे उन्होंने अपनी रिसर्च से जो है वो ये बात निकाल ली कि ये लॉ है कि अगर जो है पानी और वाटर यानी के और इसी तरीके से ये एनवायरनमेंट दे दी जाए तो ये प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। अब इसमें जो उन्होंने चीज समझी वो ये लॉ समझा, अगर वो इस लॉ की बजाय थोड़ा सा भी परसेंटेज कोई चीज की चेंज कर दें, हीट को बढ़ा दें या हीट को कम कर दें या फूड की कंसंट्रेशन बढ़ा दें या कम कर दें, तो अब जो है ये प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। तो रिसर्चर्स ने कोई नई चीज तो रिसर्च नहीं की, उन्होंने कोई चीज नई तो रिसर्च नहीं की। अगर वो नई चीज रिसर्च कर सकते हैं तो ये रिसर्च करके दिखाते कि पानी के बगैर क्या जिंदगी बनाई जा सकती है, जिसकी कोशिश की जा रही है कि डिफरेंट प्लैनेट्स पे चले जाएं और शायद वहां पर बगैर पानी के लाइफ हो। अल्लाह फरमाते हैं वजअलना मिनल माई कुल शयइन हय, हमने हर चीज को पानी से जिंदगी बख्शी है, अब इनको चाहिए कि ये पानी के बगैर वो जिंदगी पैदा करके दिखाएं, यानी प्लांट ग्रो करा के दिखाएं, तो ये नहीं करा कर सकेंगे क्योंकि अल्लाह ने ये प्रिंसिपल दे दिया और उस प्रिंसिपल के मुताबिक उस लॉ के मुताबिक जब तक वो चीज नहीं होगी तो ये चीज नहीं बन सकती। तो रिसर्चर्स ने जुजियात से वो निकले और कुल्ली तक पहुंचे, यानी जुजियात कहते हैं ब्रांचेस को, और ब्रांचेस से होते हुए वो स्टेम उस यानी हाइपोथेसिस और फिर थ्योरीज एंड देन दे रीच टू द लॉस। तो यहां से उन्होंने लॉ को पहचान लिया और जब उन्होंने पहचान लिया तो अब उसको यूटिलाइज कर लिया। आयरन है इसी तरह, उन्होंने समझ लिया कि आयरन को जो है कैसे यूज किया जा सकता है मेल्ट करके और किस तरह से उसको स्टोन से अलग किया जा सकता है। अब एक बात समझ में आ गई, अब मेल्ट करते चले जाओ और आयरन के साथ जितनी मर्जी चीजें बनाते चले जाओ, बात मुश्किल नहीं रही। पहली दफा बस इसको समझना था कि कितने टेम्परेचर पर और किस प्रोसेस के जरिए से हम जो है आयरन को प्योरीफाई कर सकते हैं। जब उनको ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस समझ में आ गया, अब उसके बाद आयरन से जो मर्जी करते फिर रहे, ये उनको जो है उसका लॉ समझ में आ गया। एग्जैक्टली इसी तरह गोल्ड होता है, वो स्टोन्स के साथ मिक्स होता है और आम आदमी उस स्टोन से उसको सेपरेट नहीं कर सकता। किसी को गोल्ड माइन मिल जाए और वो कहे कि मैं वहां से स्टोन्स उठा के ले आता हूं और घर में अपने चूल्हे पर रखूंगा और इसको जो है मेल्ट करके पत्थरों से अलग कर लूंगा, तो इम्पॉसिबल है। उसके लिए वो स्पेशल प्रोसेस जो है ये रिसर्चर्स का काम होता है कि वो उस बात को जो है इन्वेंट करते हैं कि हम किस तरह इस गोल्ड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। जब वो उसको प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं, अब उस गोल्ड से जो मर्जी बनाते रहे, उनके पास जो है अब एक लॉ आ गया और ये फाइनल चीज जब उनके पास आ गई उससे जो मर्जी करते रहे। इसी तरह मेडिसिंस होती हैं, उन मेडिसिंस को वो एक्सट्रैक्ट करते हैं कभी प्लांट से, कभी कहीं से, कभी किसी केमिकल से। जब वो केमिकल उनके सामने खुल जाता है, अब वो उसको आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं, अपनी किसी और रिसर्च लेबोरेटरी में भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। बस बात समझनी थी कि ये केमिकल जो है ये जो है बॉडी के अंदर ऐसे प्रोसेस करता है, जब वो उनको समझ में आ गया अब उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तमाम इल्मुल अबदान है और इसके जरिए से तमाम इन्वेंशंस हो रही हैं, तमाम रिसर्च हो रही है और ये कांस्टेंट ऑनगोइंग है। इंसान मुसलसल ये काम कर रहे हैं और मुसलसल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बरकात यहां रखी हुई है उनसे ये फायदा उठा रहे हैं। यहां तक ये बात समझ आई। अब जो है ये जितना भी काम किया गया इल्मुल अबदान का, ये बगैर अकल के तो नहीं हुआ, इसके लिए नॉलेज भी चाहिए था, इल्म भी चाहिए था, और इल्म को हासिल करने के लिए अकल भी चाहिए थी। इसलिए जो पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं और जो रिसर्च में जाते हैं, दे आर स्मार्ट पीपल और सारी दुनिया उनको सलूट करती है और उनके स्मार्टनेस को एक्नॉलेज करती है, मानती है कि यस दे आर स्मार्ट पीपल, और उनकी स्मार्टनेस की वजह से बाकी तमाम लोग फायदा उठाते हैं। मेरे भाइयों, एग्जैक्टली इसी तरह तशरी निजाम के इल्म, जिसे इल्मुल अधियान कहते हैं, जो कुरान और हदीस की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया के जरिए दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस अपने फरमान से सहाबा को समझाया। सहाबा कराम के अंदर कुछ लोग, कुछ सहाबा ऐसे थे जिनका माइंड रिसर्चर्स की तरह था, वो स्कॉलर्स थे, वो फकीह थे, यानी वो तफक्कुर करते थे, सोचते थे, समझते थे, गौर करते थे और कुरान और हदीस से अल्लाह की मंशा को पहचानते थे। फमा लिहा उलाइल कौम ला यकादून यफकहून हदीसा, इन लोगों को क्या है कि बात भी नहीं समझते है। अभी यहां पर ये लफ्ज यफकहूना बता रहा है कि फकीर लोग होते हैं, ये फिक जो है इसी चीज को कहते हैं। और आखिर में हदीसा के लफ्ज से पता चल रहा है, हदीस बात को कहते हैं और उस बात पर गौर करने को फिक कहते हैं। तो मालूम हुआ कि मुफ्ती हजरात कौन होते हैं, जो इल्मुल अधियान पर गौर करते हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात है और बड़ी खूबसूरत बात है मेरे भाइयों, दुनिया के मामले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुलियात को छुपा दिया, सीक्रेट्स को, लॉज को छुपा दिया और जुजियात को खोल दिया, यानी पत्थरों में भी सोना पड़ा हुआ है और जमीन के अंदर भी हीरे जो है वो बिखरे हुए हैं और समंदर की गहराइयों में भी जो है जूल्स पड़े हुए हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन उनको इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकल अता फरमाई और कहा मेहनत करो और इसको, इससे फायदे उठाते चले जाओ, और रिसर्चर्स यही काम करते चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह की शान देखें, अल्लाह कितने करीम हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुलियात हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको वही के जरिए से अपने महबूब के सीने पर नाजिल कर दिया, कुरान और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। ये जो है कुलियात है, लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और अल्लाह ने फरमाया तमाम बातें जो है अल्लाह ने इस कुरान मजीद में डाल दी है। अब फकीह क्या करता है, एक एक कुल्ली को लेता है और उसमें से जुजियां निकालता चला जाता है, उसके ब्रांचेस निकालता चला जाता है। अब यहां अपोजिट वर्क हो रहा है, क्योंकि कुरान का ताल्लुक जो है दुनिया और आखिरत के साथ है, दुनिया और आखिरत के खजाने इस इल्म के साथ वाबस्ता हैं, तो लिहाजा दुनिया में रहते हुए आखिरत के खजानों का पता नहीं चल सकता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही के जरिए से ये नेमत जो है ये नाजिल फरमा दी और अब जो है फकीर लोग उससे फायदे उठाते चले जा रहे हैं। ना कुरान बदलता है, ना नबी का फरमान बदलता है। जमाना बदलता चला जाता है, बदलता चला जाता है। इंसानों की जरूरतें, इंसानों के मिजाज तब्दील होते चले जाते हैं, और जो है फकीह बैठकर गौर करते रहते हैं और उसमें से जुज़ियात निकालते चले जाते हैं, निकालते चले जाते हैं। मुज्तहिदीन वो हस्तियां होती हैं जो अल्लाह के इस दीन के इल्म यानी इल्मुल अधियान में गौर करते हैं, इन असूल व कुलियात को समझते हैं, और उनको कहते हैं मुज्तहिद फिश्शरा। जैसे हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का दर्जा था, फिर इसी तरह बाकी लोगों ने भी काम किया। अब इन कुलियात से जुजियात निकाली, और इन कुलियात का नाम मजहब कहलाता है। जब किसी से पूछा जाता है भाई मजहब क्या है, अरबी का लफ्ज है, और वो कहते हैं हनफी है, मालिकी है, शाफी है, हम्बली है, तो इसको मजहब कहते हैं। लिहाजा अब समझ में बात आ गई कि साइंसदानों ने जो दुनिया में काम किया, कवानीन फितरत को ढूंढ निकाला, तो वो इस बात से मूजद कहलाए, यानी वो इजाद करने वाले कहलाए, इन्वेंटर कहलाए। और वही काम जो है जब किसी इल्म वाले दीनदार बंदे ने, मुत्तकी बंदे ने इस काम को किया, तो फिर वो फकीह कहलाया, मुज्तहिद कहलाया। अब जो मूजद होता है उसने कुलिया को पता किया और उसने उसको इस्तेमाल किया और उससे जुजियात को निकाला, और उसने कवानीन फितरत को इस्तेमाल किया। उसने कोई चीज खुद से नहीं बनाई, ना वो जिंदगी दे सकता है, ना कोई मैटर को क्रिएट कर सकता है, वो खालिक वाले काम नहीं कर सकता, वो खालिक की बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल करता है। बिल्कुल इसी तरह जो मुज्तहिद दीन होता है वो भी इसी तरह कुलियात को इस्तेमाल करते हुए जुज़ियात निकालता चला जाता है और मसाइल के हल बताता चला जाता है। तो मालूम हुआ कि मुज्तहिद ने खुद से दीन नहीं बनाया, उसने खुद से मुज्तहिद ने दीन नहीं बनाया। कि अगर कोई कहने वाला कहे कि तुम तो इमाम अबू हनीफा के पीछे चल पड़े हो, भाई इमाम अबू हनीफा के पीछे नहीं, अल्लाह के हुक्मों के पीछे चलते हैं, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने हमें जो है उसका समझा दिया और उसकी कुल्ली से जुज़ियात निकालने का तरीका बता दिया। ऐसे समझे जमीन के अंदर पानी होता है और आप पंप लगाते हैं और वो पंप जो है पानी निकालता चला जाता है, पानी पंप से निकलता हुआ नजर आता है। कोई बेवकूफ ये कहेगा कि भाई ये पानी पंप से निकल रहा है, कहेंगे ये पानी जमीन से निकल रहा है। इसी तरह एक फकीह जो होता है, मुफ्ती जो होता है, वो पंप की तरह होता है, वो पानी नहीं पैदा करता, वो बल्कि पानी जो मौजूद होता है उसी को ही निकाल निकाल कर लोगों को देता है। लोग उससे वुजू करते हैं, गुसल करते हैं, पानी को पीते हैं, खुश होते हैं, फायदे उठाते हैं। बाज लोगों को जो है मसला पैदा हो जाता है कि जी मुफ्ती हजरात जो है वो कयास करते हैं। कयास कहते हैं कि मसले का हल निकालने के लिए नामालूम सवाल का जवाब जो है जिसका पता नहीं उसका, उसको रिलेट करके उससे एक मिसाल उसकी समझकर उसका जवाब दे देना कहलाता है कयास किया। क्योंकि इल्लत हुक्म यानी अल्लाह का जो हुक्म है अगर उसकी काज समझ में आ जाए तो उसकी बेस पर یعنی اللہ کی منشا کو جانتے ہوئے بندے کو قیاس کیا جا سکتا ہے. اور اللہ کی منشا کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ قرآن سے، حدیث سے، اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، صحابہ کے عمل، ان کو دیکھتے ہوئے سبحان اللہ فقی لوگ قیاس کرتے ہیں اور وہ پوائنٹ کو سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی منشا کیا ہے، اور وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں. اور یہ سارا کام کرنے کے لیے عقل چاہیے، کیونکہ یہ علم ہے، اور علم جو ہے بغیر عقل کے حاصل نہیں ہوتی. اب دوسری بات سمجھیں، یہ جو تکوینی نظام ہے، یعنی جو دنیا بنائی گئی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ 6 دن میں ہم نے بنایا. خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، زمین و آسمان 6 دن میں بنایا. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ بعض اوقات 1 دن 1000 سال کے برابر بھی ہوتا ہے. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ مما تعدون، کہ بھئی یہ حساب میں 1000 سال کے برابر بھی ہوتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو تکوینی نظام ہے، دنیا کا تمام سسٹم جو ہے، جو برکات ہیں اور دنیا کا بننا، یہ سب اگر اس طرح سے ہم انڈرسٹینڈ کریں تو یہ 6000 سال کا ڈیوریشن ہے جس میں دنیا کو بنایا گیا ہے. اب یہ جو تشریعی نظام بنا ہے، یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ علم نازل ہوتا رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر مکمل ہو گیا. علماء نے کتابوں میں لکھا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 6000 سال کا ڈیوریشن تھا. تو نظام تکوینی بھی 6000 سال میں بنا، اور نظام تشریعی جو ہے یہ بھی 6000 سال میں بنا. دونوں کا تعلق عقل سے ہے، دونوں کو سمجھا جا سکتا ہے. تکوینی نظام جو ہے وہ بھی گریجولی بنا، درجہ بدرجہ، اور تشریعی نظام بھی درجہ بدرجہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا. آدم علیہ السلام کو ایک قسم کا علم دیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو اور علم دیا، حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے حلال اور حرام کا علم دیا، اور اس طرح سے کرتے کرتے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، اور آپ کو فرما دیا گیا کہ آج ہم نے آپ کے اوپر نعمت کو مکمل کر دیا ہے. اللہ اکبر. اب اگر ہم یہ کہیں کہ تکوینی نظام میں کیا انوینشنز ہو سکتی ہیں، ایجاد ہو سکتی ہے، تو جواب آئے گا یس، ہم اس میں ایجادات کرتے ہیں. اگر ہمیں کلی کا پتہ چل جائے گا، اس کے لا کا پتہ چل جائے گا. اسی طرح تشریعی نظام میں کیا اجتہاد ممکن ہے، تو جواب ملے گا یس، اگر ہم جب ہمیں کلی کی بات سمجھ میں آ گئی، کلی سمجھ میں آ گئی، تو اب جزی نکالنا آسان ہو گیا، کوئی مشکل بات ہی نہ رہی. جب ہمارے پاس پرنسپلز آ گئے ہیں، تو وہاں سے اب ایک فقی بیٹھ کر مسئلوں کے جواب دے سکتا ہے. سائنسدان وقت کی ضرورت کے تحت نئی نئی انوینشنز کرتے ہیں، ایجادات جو ہے کرتے ہیں، اور فقہا حضرات بھی پیش آنے والے مسائل کا اجتہاد کرتے ہیں، اور وہاں سے وہ جو ہے بات کو سمجھتے ہیں. اسی لیے ائمہ اربعہ جو ہے امام اعظم مجتہد فی الشرع کہلائے، انہوں نے اجتہاد کیا. مجتہد فی المذہب آئے، پھر مجتہدین فی المسائل آئے، وہ انہوں نے مسائل، استخراج، یہ سب کچھ کرتے چلے گئے، نکالتے چلے گئے، اور یہ چیزیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھیں، ان کو بتاتے چلے گئے، اور اس سے یہ مذہب کمپائل ہو گیا. اللہ اکبر. اب کی جو نظام کائنات ہے، अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा पेचीदा नहीं बनाया, ऐसा डिफिकल्ट नहीं बनाया, ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया कि इंसान को समझ ही ना आ सके। अगर इंसान ने इस दुनिया में रहना है तो उसको इन प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उससे फायदा उठाना पड़ेगा। एक वक्त था जिसको हम स्टोन एज कहते थे, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर आयरन स्टेज आई और डिफरेंट डिफरेंट जो है एजेस कहलाई वो सारी, और करते करते आज हम इस मॉडर्न साइंस के टाइम में रह रहे हैं। तो भाई इंसानों ने मेहनत करते करते उन प्रिंसिपल्स को समझते समझते जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस बनाई हुई कायनात को एक्सप्लोर करते रहे, और इससे फायदा क्या हुआ कि उन्होंने अल्लाह ताला के उस जमाल का जो है वो नजारा किया, जो तकवीनी निजाम जो है ये जमाल है और उन अफ़आल का ज़हूर है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो कुछ बनाया इससे ब्यूटी का पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फूलों को, फलों को और जमीन को, आसमान को, चांद को, सितारों को ये जो है ब्यूटी जो है अपने जमाल के साथ उसको रिलेट किया, और फिर इस तरीके से उन अफ़आल यानी उनको उनकी जो फिजिक्स है और उनकी जो साइंस है और उनकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो सारी की सारी जो है वो काम कर रही है, और इससे हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में पता चला, अल्लाह की उन सिफात का पता चला जिनका ताल्लुक जो है इस जमाल से है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको बना के जो है समझाया। लेकिन तशरी निजाम जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस कमाल का मजहर है कि जिससे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अलीम है, अल्लाह ताला जो है सब चीज उनकी कुदरत में है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उन्होंने जो है इस निजाम को जो है तशरी निजाम को जो है दिया, और वो जो है क्यामत तक ये दीन जो है काबिल अमल बन गया। लिहाजा ये तशरी निजाम भी सारे का सारा इंसान की अकल समझ में आने वाला निजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको सबसे पहले मान लेना चाहिए। आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्र खैरी व शर्री मिनल्लाहि तआला वल बअथ बादल मौत। आमंतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही والصفاتي وقبلت جميع احكامه اقرارا باللسان وتصديقا بالقلب। ये कहने के बाद मेरे भाइयों तुम फिक्र यानी के तफक्कुर करो और समझो और समझो और समझो, तुम्हें जो है इन राजों से अल्लाह तुम्हारे सीने को भर देगा, और इस तशरीई निजाम के अंदर क्या क्या हिकमत है, तुम नमाज पढ़ते हो और इस नमाज के तुम्हें क्या फायदे होते हैं, लोगों ने किताबें लिख 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 के पता नहीं कितने जो है सफ़े काले कर दिए और बताया कि भाई देखो कि इस नमाज के कितने फायदे हैं, जाहरी फायदे, बातनी फायदे, साइंसी फायदे, फलां फायदे, फलां फायदे, रोजा रखने के ये फायदे और जकात देने के फायदे, हज करने के फायदे, और इसी तरह पूरे पूरे दीन इस्लाम के फायदे 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 फायदे। अब जितना चाहो इसको समझो, जितना चाहो इससे फायदे उठाओ, लेकिन पहले ईमान लेकर आओ। वल अकुल असलु दीन। अब बताओ कि भाई ये इसका ताल्लुक अकल से है कि नहीं, जिसके अंदर रत्ती बराबर भी अकल ना हो तो वो क्या करेगा, उसको सिर्फ मालूमात हासिल होंगी, इंफॉर्मेशन उसको पता चलेगी, वो तोते की तरह कुरान मजीद को रट्टे मार लेगा, वो अलिफ लाम मीम से शुरू करेगा वन नास तक खत्म करेगा, और उस बेवकूफ को कुछ पता ही नहीं होगा कि इस कुरान मजीद में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर अकल जो है वो उस किस्म की है ही नहीं जो दीन के इल्म को हासिल करने के लिए जरूरत होती है। हमने पहले पढ़ा था अकल माश होती है और अकल माद होती है। अगर अकल सिर्फ दुनिया तक महदूद है, दुनिया के फायदे और अपना पेट भरना, नौकरी करना और जो है बच्चे पैदा करना, अपनी शहवत को पूरा करना और बस इसी तक ही वो जिंदगी गुजारते गुजारते मर गया, अब वो चाहे जो मर्जी कहलाता फिरे, चाहे सारा का सारा कुरान याद करके बैठा रहे और सारा का सारा कुरान का तर्जमे बताता फिरे, इसको रत्ती बराबर भी इलम नहीं है क्योंकि इसके अंदर अकल ही नहीं है। अगर अकल होती तो फिर उन मारफ को जानता और उससे उसको दुनिया और आखिरत के फायदे हासिल होते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, तुम लोग में से बहुत सारे लोग अल-मुअल्लिम में तालीम हासिल कर रहे हैं, दीन पढ़ रहे हैं। दीन सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं है, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि तुम इसको गैदर कर लोगे और डिस्कशन किया करोगे, लोगों को बताया करोगे कि मैं बड़े इलम वाला हूं, मुझे ये बात भी पता है। हाँ हाँ मुझे भी पता है, हाँ हाँ मुझे पता है, नहीं है, असल में बात है कि तुमने अमल भी किया है कि नहीं किया है। अगर पढ़ पढ़ कर अमल नहीं किया, तुमने वक्त बर्बाद किया अपना भी और तुमने माल भी जाया किया, तुमने अपनी जिंदगी को जाया किया है। तलबा को चाहिए कि वो अपने वक्त को सही गुजारने की आदत डालें और नेक बनने की कोशिश करें, नेकी और पारसाई को हासिल करो मेरे भाइयों। इसी का नाम जो है बताया गया कि ये दीन की जड़ है, ये उसकी रूट्स हैं। अगर अकलमंद नहीं होगे तो फिर अबू जहल कहलाओगे। अबू जहल जो है इसको मक्के वाले अबुल हकम कहा करते थे, ये बड़ा अकलमंद बंदा था, लोगों के मसले हल करता था, अपना मसला हल नहीं कर सका था। इसने गौर ही नहीं किया कि मैं जो है जहन्नम में जा रहा हूं, दूसरों को बातें बताता रहा और खुद जहन्नम में दाखिल हो गया। कुछ लोग इसी तरह जो साइंस पढ़ लेते हैं और कुछ बातें किताबें जान लेते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये जो दीन का इलम पढ़ने वाले हैं ये अकलमंदी नहीं है, क्या सारा दिन कुरान याद करते रहते हो, हाफिज बन जाते हो, क्या मिलेगा तुम्हें इसमें रट रट कर। ओ जी सारा दिन ये जो है ना जराबा जराबा जराबू जराबत करते रहते हैं, पता नहीं क्या फायदा होगा इसका। बल्कि यहां तक ये लोग कहते हैं कि भाई अपने बच्चे को कोई जो है पढ़ना लिखना भी सिखाया है, यानी दूसरे लफ्जों में उनको इल्मुल अबदान के अलावा जो इल्मुल अध्यान है उसकी समझ नहीं आती, बस साइंस जो है वही उनके दिमाग में बैठी हुई है और बस यहीं तक ही उनकी अकल मारी हुई है। ये भी बेवकूफ लोग हैं और ये समझते हैं कि उलमाए कराम को और जो पढ़ने वाले तलबा हैं इनको कोई अकल समझ ही नहीं है, ये बैठे हुए वक्त जाया कर रहे हैं और खाम खा की नमाजें और खाम खा के जिक्र अजकार और ये मुराकबे किए जा रहे हैं, ये वक्त जाया हो रहा है। इसकी बजाय भाई कुछ दुनिया में आए हैं, अगर आपने दुनिया में कोई बड़ा काम करना है, बड़ी सिविलाइजेशन आपने हासिल करनी है, तो आपको साइंस एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखें अंदाजा करें, हालांकि अल्लाह ने दोनों निजाम बनाए, दोनों जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इलम बनाए और दोनों जो है उनके समझने के लिए एक अकल बनाई, किसी ने अकल माश बना दिया उसको और किसी ने उसको अकल माद बना दिया, यानी अगर अकल माश थी तो सिर्फ दुनिया तक ही सोचती रही और दुनिया के फायदे उठाती रही, मैं डॉक्टर इंजीनियर और साइंटिस्ट बन जाऊं, इससे आगे उसने नहीं सोचा मौत के बाद क्या होगा। और इसी तरह जो है الحمدللہ وہ لوگ جو دین پڑھتے ہیں ان کو بیوقوف سمجھنا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے اور ناسمجھداری ہے. تم لوگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہی نہیں ہوتا. اگر آپ لوگوں نے علماء کرام طلباء کرام کے ساتھ وقت گزارا ہوتا تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ وہ کتنے سمجھ والے لوگ ہوتے ہیں, کتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی فہم نصیب فرمائے اور حکمت نصیب فرمائے, دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے عقل تو سب کو دی ہے, کوئی استعمال کر لیتا ہے اور کوئی یوں ہی دنیا میں آ کر چر پھیر کر گھاس کھا کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے دین میں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.